कबीर से बात करने के बाद सॉफ्ट एक्सप्रेशंस के साथ आरव कमरे में पहुंचा। आरव अंदर आया तब तक आयु गहरी नींद में सो चुकी थी। आरव ने आयु के पास आकर उसके फॉरहेड पर हल्की सी किस किया और फिर आयु से दूर होकर सो गया। आखिर कुछ देर पहले उसने आयु को टाइम देने का वादा जो किया था। अगली सुबह आरव की आंख खुली तब तक आयु उठ चुकी थी। संडे होने की वजह से दोनों ही घर पर थे। आयु को अपने पास ना पाकर आरव ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, अर्ली राइजर, आज का दिन हमारा, नीचे जाने से पहले तैयार हुआ जाए। आरव तैयार होने के लिए बाथरूम में गया। ऑफिस ना जाने की वजह से उसने ब्लू डेनिम पैंट्स के ऊपर स्काई ब्लू शर्ट पहना था। आरव कैजुअल्स में भी काफ़ी हॉट लग रहा था। आरव नीचे जाता उससे पहले आयु ब्रेकफास्ट लेकर ऊपर आ गई। हर दिन से अलग आयु ने लैवेंडर कलर का अनारकली सूट पहना था। आरव ने आयु को नज़र भर देखा और कहा, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं रहे मुझे, बोलते हुए उसने आयु को अपने करीब खींच लिया। आयु ने आरव को खुद से अलग किया और मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, ब्रेकफास्ट यहाँ लेकर आई क्योंकि दादी ने कहा था। ठीक है, आरव ने लापरवाही से जवाब दिया और वहाँ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगा। आयु को लगा आरव उसे मनाएगा पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आयु आरव के पास बैठते हुए बोली, इसमें मेरा भी ब्रेकफास्ट रखा है, थैंक यू बोलना तो दूर, तुमने तो पूछा तक नहीं। और मैं क्यों पूछूं, तुम तो नाराज़ हो ना, नाराज़ लोग बात नहीं करते हैं, आरव ने जवाब दिया। कम से कम ये तो पूछ लो किस वजह से नाराज़ हूँ, आयु ने चिढ़ते हुए कहा। आरव के इग्नोर करने पर उसे गुस्सा आ रहा था। आरव ने आयु की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, तुम्हें बताना होगा तो बिना पूछे ही बता दोगी, बोलते हुए उसने आयु की तरफ चम्मच बढ़ाई। आयु ने खाते हुए कहा, तुमने मुझे अब तक नहीं बताया कि तुम्हारे और छवि सिंघानिया के बीच क्या प्रॉब्लम है और ये माहिरा लूथरा तुमसे कैसे जुड़ी हुई है। लिसन, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद हमारे बीच कोई राज नहीं रहेगा, अब तो शादी भी हो गई है, तुम्हारी वाइफ होने के नाते मेरा सब जानने का हक बनता है, चलो जल्दी से बताओ अब। हाँ ज़रूर बताता अगर हमारी शादी नॉर्मल सिचुएशन में हुई होती। समटाइम्स आई थिंक कि तुमने मेरा पास्ट जानने के लिए मुझसे शादी की है। जो भी हो पर अब मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा है, आरव ने बिना किसी भाव के कहा। उसकी आवाज़ में सख्ती देखकर आयु समझ गई थी कि आरव ने अब तक दिल से उसे माफ़ नहीं किया था। आयु ने मायूस चेहरे के साथ कहा, लेकिन तुमने कहा था कि तुम सब कुछ भूलकर इस रिश्ते को एक नया चांस दोगे। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम मुझसे अब तक नाराज़ हो तो फिर मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? बस तुम्हारी इसी आरोगेंस की वजह से मेरा इस रिश्ते को निभाने का दिल नहीं कर रहा। मिसेस खुराना, अपनी गलती मानने के बजाय तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। आरव पहले काफ़ी नॉर्मल की बात कर रहा था लेकिन अब उसे गुस्सा आने लगा था। इस बीच आरव ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और उठकर जाने लगा। आयु उसके पीछे गई और उसका हाथ पकड़कर कहा, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, ना मुझे जाने देना चाहते हो ना कि मेरे साथ रहना चाहते हो। पनिशमेंट मिसेस खुराना, पनिशमेंट, तुमने मेरे साथ जो भी किया ये उसकी सज़ा है, आरव ने सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर वहां से जाने लगा। तभी वो वापस रुका और आयु की तरफ मुड़कर बोला, परसों रिसेप्शन पार्टी है, कल का दिन है तुम्हारे पास, जो चाहिए वो ले आना, बोलते हुए आरव ने अपना कार्ड निकाला और आयु की तरफ बढ़ा दिया। आयु ने ना में सिर हिलाते हुए हल्के गुस्से में कहा, मेरे पास खुद का कार्ड है, मुझे भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, सो आई डोंट नीड योर फेवर, आयु ने पूरे एटीट्यूड से जवाब दिया। आरव ने अपना कार्ड वापस रखते हुए कहा, एज यू विश, कहकर आरव से वहां से जाने को हुआ। तभी आयु ने उसे पकड़कर खींचा और दीवार के लगा दिया। अब तक आरव ही ऐसा किया करता था, आज आयु की इस हरकत से आरव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। व्हाट मिसेस खुराना, आरव ने बोहेम ठाकर पूछा। नथिंग मिस्टर खुराना, आयु ने आंखें दिखाते हुए जवाब दिया। उसने आरव के दोनों कंधों को मजबूती से पकड़ा और उसके पास आकर सख्त आवाज में कहा, आई एक्सेप्ट कि मुझसे गलती हो गई थी, सॉरी भी बोल चुकी हूँ, तुम्हारी हर जिद और गुस्से को झेल रही हूँ, नाउ व्हाट डू यू वांट आरव, आयु की आवाज़ में गुस्सा था। आरव ने आयु की आंखों में देखा और इंटेंसिटी से कहा, इम्प्रेस मी मिसेस खुराना। क्या, आयु ने हैरानी से पूछा, वो आरव की बातों का मतलब नहीं समझी थी। आरव ने उसे समझाते हुए कहा, ओके लेट मी एक्सप्लेन यू, साबित करो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और इस रिश्ते को उतनी ही शिद्दत से निभाना चाहती हो जितनी शिद्दत से मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम प्रूफ कर दो आयु, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। ऐसा बहुत कम चांस में हुआ था जब आरव ने आयु के सामने उसका नाम लिया हो, वो उसे मिसेस खुराना या बेबी कहकर ही बुलाता था। मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, तुम जो कहते हो वही कहो, आयु ने धीमी आवाज़ में कहा। ओके आई विल, चलो अब मुझे जाने दो, जो कहा है मुझे इम्प्रेस कर दोगी तो सब सच बता दूंगा, आरव ने जवाब दिया और वहां से जाने को हुआ। तभी आयु ने उसे वापस दीवार के लगा दिया। आरव हैरानी से आयु की तरफ देख रहा था, वो कुछ समझ पाता उससे पहले आयु के होंठ आरव के होठों पर थे और वो उसे काफ़ी इंटेंसली किस कर रही थी। अब तक उन दोनों के बीच में जब भी किस हुआ था वो आरव की पहल करने की वजह से हुआ था,
आज पहली बार आयु उसके करीब आई थी, वो भी अपनी खुशी से। पहले तो आरव हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था, पर बाद में वो भी उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद आरव आयु से अलग हुआ और गहरी सांसें लेने लगा। आयु हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, डोंट टेल मी कि तुम क्लॉस्ट्रोफोबिक हो। आरव ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। आयु उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, जस्ट रिलैक्स, लेट मी हैंडल यू। बोलकर आयु ने अपने होंठ आरव के होठों पर रखा और उसे हल्के हल्के ब्रेथ देकर उसकी ब्रीदिंग को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। कुछ देर में आरव नॉर्मल हो गया था। उसने आयु की तरफ देखकर कहा, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि मुझे एक डॉक्टर से शादी करनी चाहिए। इम्प्रेस करने का ये तरीका भी मुझे पसंद आया। लगी रहो, यू आर ऑन पॉइंट, कहकर आरव कमरे से बाहर चला गया। वहीं आयु स्माइल करते हुए उसे जाते हुए देख रही थी। दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे। अयान ने साक्षी को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट का एड्रेस सेंड किया था और तय समय पर साक्षी और अयान वहां पहुंच चुके थे। रात को साक्षी की बेटी के बारे में पता चलने के बाद अयान काफी परेशान था, लेकिन उसने जब साक्षी का मुस्कुराता चेहरा देखा तो वो सब भूल गया। अयान ने साक्षी के लिए चेयर पुल की और उसके बैठने के बाद उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। उसने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच मेरे लिए टाइम निकालने के लिए, मैं तो फ्री ही रहती हूँ, आप बिजी रहते हो डॉक्टर साहब, साक्षी ने हंसकर जवाब दिया। फिर उसने मेन्यू कार्ड उठाया और अयान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपने लिए कुछ भी ऑर्डर कर लो, आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। अयान ने उसकी बात पर हामी भरी। अयान ने अपने लिए पिज्जा तो साक्षी ने अपने लिए लजानिया मंगाया था। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह उससे उसकी बेटी के बारे में पूछे। दोनों काफी देर तक बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। साक्षी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे लगा हम आखिरी बार इस तरह मिल रहे हैं तो खूब सारी बातें करेंगे, पर तुम तो चुपचाप बैठे हो, इतना परेशान मत हो, वहाँ जाने के बाद ज्यादा ना सही पर कॉल पर बात तो कर ही सकती हूँ।
आपकी तो पूरी फैमिली होगी ना, फिर उनके बीच आप मुझे क्यों याद करेगी? वैसे आपने बताया नहीं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? अयान ने सीधे पूछने के बजाय उसकी फैमिली के बारे में पूछा, ताकि साक्षी उसे इनडायरेक्टली ही सही लेकिन अपनी बेटी के बारे में बता सके। अयान के मुंह से फैमिली की बात सुनकर एक पल के लिए साक्षी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए, पर अगले ही पल उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, हमारे घर में मॉम डैड, मैं और मंथन के अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, बाकी चाचा चाची और कज़िन वगैरह आते रहते हैं लेकिन उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं होता, डैड की मीटिंग वगैरह उनके सेक्रेटरी के अलावा मैं हैंडल करती हूँ। साक्षी ने अयान को अपनी बेटी के बारे में नहीं बताया था। अयान को लगा कि वो साक्षी के साथ नहीं रहती होगी, इसलिए साक्षी ने उसे अपनी बेटी के बारे में नहीं बताया, उसने आगे कुछ नहीं पूछा। साक्षी ने बात बदलते हुए कहा, तुमने नहीं बताया तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? सिंघानिया मेंशन में मैं और आयशा दो ही रहते हैं, मॉम आती जाती रहती है, उनका ज्यादातर टाइम दुबई में ही बीतता है पर आजकल वो मुंबई में ही है, अयान ने सादगी से जवाब दिया। हाँ, तुम भी ज्यादातर टाइम हॉस्पिटल में ही स्पेंड करते हो, तुम्हें और आयु को तो टाइम भी नहीं मिल पाता होगा। वैसे मुझे तुम दोनों की लाइफ अच्छी लगती है, लोगों की जान बचाते हुए अपना टाइम स्पेंड करना, वरना मेरा पूरा टाइम तो डैड की मीटिंग लाइनअप करने में ही निकल जाता है, साक्षी ने मुस्कुराकर कहा। अयान ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसकी बात का हाँ या ना में जवाब दे रहा था। अयान और साक्षी लगभग 2 घंटे तक वहां पर रुके, लेकिन इस बीच एक बार भी अयान ना तो अपने दिल की बात बता पाया और ना ही साक्षी से उसकी बेटी के बारे में पूछ पाया। लगभग 2 घंटे के बाद साक्षी जब वहां से जाने लगी तो अयान का दिल भारी होने लगा। उसे ऐसे लगा जैसे वो दौड़कर साक्षी को गले लगा ले और उसे अपने प्यार का इजहार कर दे। वो उसे ये कहना चाहता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साक्षी किसी बच्चे की माँ है, लेकिन कुछ अयान कुछ नहीं कह पाया और साक्षी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अयान की आंखें नम थीं। उसने गुस्से में अपनी गाड़ी पर पंच मारते हुए कहा, क्यों इतना दर्द महसूस हो रहा है? इंसान को इतना भी इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए कि वो अपने दिल की बात भी ना बता सके। साक्षी, प्लीज वापस आ जाइए, मुझे आपके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कुछ मायने रखता है तो आपका प्रेजेंट और आपके साथ मेरा फ्यूचर। आई लव यू सो मच साक्षी, प्लीज कम बैक। अयान काफी तेज आवाज में बात कर रहा था और अपने में ही खोया हुआ था, इसलिए उसका ध्यान भी नहीं गया और साक्षी उसके पीछे खड़ी उसकी सारी बातें सुन रही थी।